नमस्कार भारत, तारीख 30 दिसंबर, दिन रविवार, मैं हूँ मानसी दाश। अमरीकी सेना की वापसी के बाद सीरिया में रूस और तुर्की संभालेंगे मोर्चा। अगस्ता वेस्टर्न मामले में ईडी ने कोर्ट से कहा, क्रिश्चियन मिशेल ने मिसेज गांधी का नाम लिया।
ईडी ने ये साफ नहीं किया कि मिसेज गांधी कौन है, किस कॉन्टेक्स्ट में लिया, किस संदर्भ में लिया, किस रेफरेंस में लिया, किस सब्जेक्ट वाइज में लिया, इन्होंने ईडी ने साफ नहीं किया पटियाला कोर्ट को।
मेघालय में खदान में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए अब तक नहीं शुरू किया जा सका बचाव अभियान।
सतह पे हमारी एनडीआरएफ की टीम के साथ में जाके मुआयना किया है, कुछ प्लान करेंगे वो, और प्लान करके मैं उम्मीद करता हूँ कि सुबह से वो अपना ऑपरेशन शुरू कर पाएंगे।
होंगी खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिनेश उप्रेती से। सीरिया से अमरीकी सेना की वापसी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के बाद अब रूस और तुर्की सीरिया में मिलकर काम करेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए रूसी विदेश मंत्री सरगई लेवरोव और तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत चोवासुग्लू की कल मॉस्को में मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद चोवासुग्लू ने कहा कि अमरीका के अचानक लिए गए इस फैसले के बाद अब सीरिया में जमीन पर मिलकर काम करने के लिए रूस और तुर्की के बीच सहमति बन गई है। बांग्लादेश में आज होने जा रहे आम चुनाव के लिए कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव मैदान में हैं। विपक्षी दलों ने शेख हसीना पर अलोकतांत्रिक तरीके अपनाने का आरोप लगाया है और कहा है कि चुनाव में निष्पक्षता नहीं बरती जा रही है। राजधानी ढाका में विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के संयुक्त महासचिव रुहुल कबीर रिजवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उनकी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा,
आवर लीडर्स एंड वर्कर्स हैव बीन अरेस्टेड बाय द लॉ एनफोर्सर्स, 11,506 लीडर्स एंड एक्टिविस्ट।
जांच एजेंसियों ने हमारे कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। मुख्य चुनौती यह है कि साफ सुथरे और निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं, और ये तभी संभव है जब निर्वाचन आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र भूमिका निभाए। ये थे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के संयुक्त महासचिव कबीर रिजवी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन के साथ व्यापार विवाद पर बातचीत में कुछ प्रगति हुई है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ फोन पर बातचीत के बाद ट्रंप ने ट्वीट कर बताया कि चीन के साथ अगर कोई समझौता होता है तो ये व्यापक होगा। इस महीने की शुरुआत में G20 सम्मेलन के दौरान दोनों नेता एक दूसरे पर और अधिक आयात शुल्क लगाने के फैसले को कुछ समय तक टालने पर सहमत हुए थे। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के चुनाव आयोग प्रमुख ने कहा है कि आज होने जा रहे राष्ट्रपति चुनावों में विपक्षी दलों के उम्मीदवारों ने चुनाव में हिंसा से बचने के शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। कॉर्नेली नांगा ने कहा कि कुछ उम्मीदवार दस्तखत करने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन कुछ इस मसले पर और बातचीत की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा,
engagement à la paix, engagement au scrutin transparent, apaisé,
शांति, पारदर्शिता और अहिंसक चुनावों के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हमने चुनाव आयोग की तरफ से ऐसा भरोसा दिया है और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर भी किए हैं। ये थे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के चुनाव आयोग के प्रमुख कॉर्नेली नांगा के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। कोस्टारिका ने कहा है कि अमरीकी राज्यों के संगठन यानी OAS ने आग्रह किया है कि निकारागुआ के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाए। इसके तहत निकारागुआ को संगठन से निलंबित किया जा सकता है। कोस्टारिका अभी OAS का अध्यक्ष है। निकारागुआ में अप्रैल के बाद से सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं और वहां बड़े पैमाने पर मानवाधिकार उल्लंघन के मामले सामने आए हैं। इटली की संसद ने अगले साल के लिए संशोधित बजट को मंजूरी दे दी है। विपक्षी दलों का आरोप है कि इटली सरकार यूरोपीय यूनियन के प्रभाव में काम कर रही है। अक्टूबर में यूरोपीय कमीशन ने इटली के बजट प्रस्तावों को खारिज कर दिया था। इन प्रस्तावों में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम देने और पेंशन सुधारों को खत्म करना शामिल था। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक और पूर्व रग्बी कप्तान बिल बिमाउंटन को नए साल के नाइटहुड से नवाजा जाएगा। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। अमेरिका के सीरिया से अपने सैनिकों को वापस बुलाने के फैसले के बाद सीरिया में हालात तेजी से बदल रहे हैं। अब रूस और तुर्की ने सीरिया में मिलकर काम करने पर सहमति जताई है और कहा है कि सीरिया में स्थायी शांति बहाल करने के लिए राजनीतिक हल तलाशे जाएंगे। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए दिनेश उप्रेती से।
रूस और तुर्की ने कहा है कि अमेरिका के सीरियाई मोर्चे से हटने के बाद वहां के हालात संभालने के लिए दोनों देश मिलकर काम करेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए रूसी विदेश मंत्री सरगई लेवरोव और तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत चोवासुग्लू की मुलाकात कल मॉस्को में हुई। मुलाकात के बाद चोवासुग्लू ने कहा चोवासुग्लू कह रहे थे कि बैठक में अमेरिका के फैसले के बाद सीरिया के ताजा हालात पर चर्चा हुई। सीरिया में भविष्य में मिलकर काम करने और चरमपंथी गुटों को खदेड़ने और चरमपंथ के खिलाफ लड़ाई के बारे में भी चर्चा हुई। वैसे भी अमेरिका और तुर्की के बीच पिछले कुछ महीनों से दूरियां बढ़ती जा रही हैं। तुर्की ईरान और रूस की तरफ मुखातिब होता जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी सैनिकों को सीरिया से वापस बुलाए जाने के फैसले के तुरंत बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तुर्की ईरान और रूस के बीच शिखर वार्ता की घोषणा कर दी थी। रूस के विदेश मंत्री सरगई लेवरोव कह रहे थे कि तुर्की के साथ इस बात पर सहमति बन गई है कि सीरिया में बने नए हालात में किस तरह दोनों देश सैन्य सहयोग कायम करेंगे। इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि सीरिया में सब कुछ संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के मुताबिक हो। तुर्की के अमेरिका के साथ दूरियां बढ़ने का एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप की तुर्की के जेल में बंद अपने एक पादरी एंड्रयू ब्रॉनसन की रिहाई की मांग को राष्ट्रपति अर्दोगन ने नामंजूर कर दिया था। इस पर ट्रंप ने तुर्की से स्टील और एल्यूमिनियम आयात करने पर 25% टैक्स लगा दिया था। करीब 7 साल पहले सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद अशांत सीरिया की आग को इराक से उभरे इस्लामिक स्टेट ने मौका माना था और सीरिया पर कब्जे के लिए कूच किया था। देखते ही देखते सीरिया पूरी तरह से जंग के मैदान में बदल गया। एक तरफ राष्ट्रपति बशर अल असद के विद्रोही थे और दूसरी तरफ इस्लामिक स्टेट के लड़ाके। असद सरकार इन दोनों से एक साथ जूझ रही थी। फिर सीरिया की जंग में यूरोप, अमेरिका, तुर्की, सऊदी अरब और कई देश अपनी भूमिकाएं तलाशने लगे। किसी ने सीरिया में हथियारों की खेप पहुंचाई तो किसी ने वहां के संसाधनों पर अपनी नजरें गड़ाई। असद सरकार पर सत्ता छोड़ने का दबाव बन ही रहा था कि रूस अपने सैनिक साजो सामान के साथ युद्ध के मोर्चे पर आ गया। रूस का असद के साथ आना बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ और विरोधियों के लिए जंग मुश्किल हो गई। ऐसे में अब अमेरिका का सीरिया से पीछे हटना और रूस और तुर्की के साथ आने से मध्य पूर्व की सियासत में नए समीकरण बनना तय है।
रिपोर्ट सुना रहे थे दिनेश उप्रेती। सीरिया मसले पर रूस और तुर्की में सहमति बनने से पहले ट्रंप ने कहा था कि इराक में मौजूद अपने सैन्य अड्डे से वो कथित इस्लामिक स्टेट और ईरान पर नजर रखेगा। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद की सत्ता का समर्थन रूस करता है, लेकिन तुर्की ने जनवरी 2017 में इस बात को स्वीकार किया था कि असद के बिना सीरिया संकट का समाधान संभव नहीं। अब सीरिया से अमेरिकी सेना के हटने पर मध्य पूर्व की राजनीति में क्या नए समीकरण बनेंगे? क्या सीरिया के हालात वाकई में सुधरेंगे? इन्हीं सवालों के उत्तर तलाशने के लिए अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की मध्य पूर्व मामलों के जानकार और अमरीका के डेलावेयर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मुक्तदर खान से।
एक्चुअली ये जो डिसीजन ट्रंप ने लिया हुए ऑन द स्पॉट डिसीजन था। ये तुर्की के जो प्रेसिडेंट रजब अर्दोगान है उनके साथ जब वो फोन पे बात कर रहे थे तो उसी फोन के दौरान उन्होंने रजब अर्दोगान से पूछा कि अगर हम सीरिया से विड्रॉ कर लेते हैं तो क्या आप आईसीस का जो बचा कुचा है उसको मैनेज कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, फौरन किसी से कंसल्ट करे बगैर कह दिया कि ठीक है, अमेरिका विड्रॉ हो जाता है, तुम आईसीस को संभाल लो। और उसके वजह से जो तुर्की फंस गया है बेसिकली कि उसको कोऑर्डिनेशन का मसाइल हो रहा है। वो चाह रहा था कि जो अमेरिका ने वाईपीजी को जो हथियार दिए हैं वो वापस ले ले, और अमेरिका ने कह रहा है कि जब तक आईसीस का जो थ्रेट है वो खत्म नहीं होता, वो वाईपीजी को डिसआर्म नहीं करेंगे।
ये वाईपीजी जो है ये कुर्द मिलिशिया है।
जी हाँ, ये सीरियन कुर्दिश मिलिशिया हर बड़ा जो मुल्क है वहाँ पर उनके प्रॉक्सीज हैं। मिसाल के तौर पे ईरान ने हिजबुल्ला के फाइटर्स को इस्तेमाल किया सीरिया और इराक में, टर्की ने थोड़े जो सीरियन अपोजिशन थी उसको सपोर्ट किया, रशिया बशार अल असद को सपोर्ट कर रहा है। जो ट्रूप्स है अमेरिका के वो फाइटिंग नहीं करते, वो दे प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन, इंटेलिजेंस, ड्रोन्स वगैरह। तो जो एक्चुअल फाइटिंग कर रहे हैं वो कर्ड्स कर रहे हैं, जो जिसको वाईपीजी कहते हैं, और उनको हथियार वगैरह अमेरिका ने काफी दे रखा है, जिससे टर्की परेशान है। वो समझता है कि अमेरिका विड्रॉ होने के बाद हो सकता है कि जो कर्ड्स हैं वो सीरिया के नॉर्थ ईस्टर्न हिस्सा, इराक का नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा लेकर एक बड़ा सा मुल्क अपना अलग से कार्व कर लेंगे। तो वो टर्की का इंटरेस्ट है। जैसा अमेरिका ने कहा कि वो वाईपीजी को छोड़ देंगे, तो वाईपीजी ने जो मंजीब नाम का जो शहर है नॉर्दर्न सीरिया में उनके कंट्रोल में, उन्होंने वो टाउन को सीरियन फोर्सेस के हवाले कर दिया। तो अगर वाईपीजी को अटैक करता है टर्की तो सीरियन फोर्सेस को भी अटैक करेगा जो रशिया के सपोर्ट में है।
बिल्कुल।
तो एक किस्म से एक अजीब सा वहाँ पे कंफ्यूजन हो गया है कि कौन किसके साथ लड़ रहा है। और अमेरिका के विड्रॉ होते ही इजराइल ने ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं सीरिया में। तो एक किस्म से टोटल नंबर ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज अभी उतने ही है जो पहले थे।
इसमें रशिया और टर्की इन दोनों का आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, इसको करना इन दोनों देशों के लिए कितना आसान और कितना मुश्किल रहेगा?
हर मुल्क की एक अलग सी इंटरेस्ट थी। रशिया का बेसिक इंटरेस्ट ईरान के साथ था कि वो बशार अल असद की गवर्नमेंट को बरकरार रखे। ये उनके सीरिया के बगैर रशिया का कोई प्रेजेंस नहीं है पूरे मिडल ईस्ट में। ईरान के लिए वो इसलिए इम्पोर्टेंट थी कि वो जो कहते हैं ना द शिया आर्क जो बनाना चाह रहे हैं, सीरिया, लेबनान, इराक, ईरान से लेके यमन और बहरीन तक, तो ये जो शिया आर्क है उसके लिए बहुत अहम है कि सीरिया रिमेन अंडर शिया कंट्रोल, हालांकि शिया बहुत टाइनी मेजॉरिटी में। तो टर्की का इंटरेस्ट ये है कि वो प्रिवेंट करना चाहता है कि वहाँ पे कोई कर्दिश स्टेट ना पैदा है। अमेरिका एक वाहिद पावर है जो आईसिस से लड़ना चाहता है, आईसिस को खत्म करना चाहता है। तो अगर अमरीका वहाँ से विड्रॉ हो जाता है तो ना तो टर्की आईसिस से लड़ेगा, रशिया और जो सीरिया की फौज है वो अपोजिशन को खत्म करने के लिए फोकस कर रही है, ना सिर्फ आईसिस को। तो एक किस्म से एक अजीब सा माहौल बन जाएगा। और ट्रंप का तो ये कहना का शुरू से है कि वो समझते हैं कि अमेरिका दूसरों मुल्कों के इंटरेस्ट में जंगे लड़ता है और अमेरिका के पैसे खर्च होते हैं। अब वो चाहता है कि दूसरे मुल्क अपने सिक्योरिटीज खुद मेंटेन करे, और अगर अमेरिका इन्वॉल्व होता है तो वो पैसे फाइनेंशियली सपोर्ट करे अमेरिका के इंटरवेंशन को।
सर एक आखिरी सवाल, की सीरिया संकट का हल जल्दी निकलना आपको कहीं दिखता है?
देखिए अभी तो 50% से ज्यादा टेरिटरी बशार अल असद ने रीऑक्यूपाई कर लिया है, लेकिन अभी भी ऑयल फील्ड्स जो हैं सीरिया के वो असद के कंट्रोल में नहीं। तो ये होगा कि 60-70% का जो सीरियन टेरिटरीज है वो बशार अल असद की हुकूमत के अंदर होगा, और बाकी का आईसिस और वाईपीजी या कर्ड्स हैं उनके अंडर होगा। तो वहाँ पे मुख्तलिफ आप फाइटिंग देखेंगे। मेरे ख्याल से 2019 के अंत में या 2020 में मिडल ईस्ट वैसे ही लगेगा जैसा वो 2010 में लग रहा था, यानी ना कोई डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट, हर जगह वही मिलिट्री डिक्टेटर्स। शायद सबसे बड़ा तब्दीली ये होगी कि शायद सीरिया फिर से एक उस तरह का इंटीग्रेटेड मुल्क नहीं बनेगा। यूं कहिए कि जिस तरह से अफगानिस्तान का रियलिटीज हैं, वो एक नया अफगानिस्तान बन गया है मिडल ईस्ट में।
सीरिया संकट सुलझेगा या नहीं, विश्लेषण कर रहे थे प्रोफेसर मुक्तदर खान।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद मामले में कथित तौर पर बिचौलिए की भूमिका निभाने वाले क्रिश्चियन मिशेल द्वारा ईडी की पूछताछ में मिसेज गांधी का नाम लिए जाने के बाद सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने जहां कांग्रेस पर निशाना साधा है, कांग्रेस का कहना है ईडी के माध्यम से मिशेल पर व्यक्ति विशेष का नाम लेने का दबाव बनाया जा रहा है। क्या कुछ हुआ कल इस मामले में, सुनिए बीबीसी संवाददाता आदर्श राठौर की रिपोर्ट।
अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद मामले में कथित तौर पर बिचौलिए की भूमिका निभाने वाले क्रिश्चियन मिशेल को शनिवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से बताया गया है कि क्रिश्चियन मिशेल ने कोर्ट के सामने अपना बयान दर्ज कराया है। ईडी के अनुसार मिशेल ने अपने बयान में श्रीमती गांधी नाम का जिक्र भी किया। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो सका है कि मिशेल ने यह नाम किस संदर्भ में लिया। पटियाला हाउस कोर्ट में मौजूद रहे बीबीसी के सहयोगी पत्रकार सुचित्र मोहंती ने बताया,
एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने पटियाला कोर्ट को यह भी बताया कि जो क्रिस्टियन मिचेल है उन्होंने मिसेस गांधी का नाम लिया है। हालांकि ईडी ने यह साफ नहीं किया कि मिसेस गांधी कौन है, किस कॉन्टेक्स्ट में लिया, किस संदर्भ में लिया, किस रेफरेंस पे लिया, किस सब्जेक्ट वाइज में लिया, इन्होंने ईडी ने साफ नहीं किया पटियाला कोर्ट को।
कोर्ट में सुनवाई के बाद इस मामले पर राजनीति भी गर्म हो गई। इसके तुरंत बाद बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यूपीए की पिछली सरकार पर निशाना साधा और ये तक कहा कि इस मामले में अब एक ही परिवार पर उंगलियां उठ रही हैं।
फैमिली और एपी इतने दो ही शब्द मालूम थे, अब आज नया खुलासा हो गया कि बिग मैन, सन ऑफ इटालियन लेडी और पार्टी लीडर सभी एक ही परिवार के तरफ इंगित करता है। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि कांग्रेस की सरकार घोटालों की सरकार रही, जलन अभ आकाश सभी जगह उन्होंने घोटाले किए, पूरे पंच महाभूतों को लूटा और उसी में द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर वॉज प्रिसाइडिंग ओवर राज ऑफ लूट।
लेकिन कांग्रेस ने इस मामले पर पलटवार करते हुए कहा कि मिशेल पर एक परिवार विशेष का नाम लेने का दबाव है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा,
जांच चल रही है परंतु हम जानते हैं इलेक्शन आ गया है, मुद्दे इनके पास कुछ है नहीं। इसी तरह के ईडी के माध्यम से तमाम लोगों पर उन्होंने इस तरह के दबाव बनाए हैं। दुबई में जब आपके तमाम पत्रकार लोगों ने उनके वकील से बात की थी, साफ तौर पर उन्होंने बयान दिया था कि किस तरह सरकारी एजेंसीज एक परिवार को नामित करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। इलेक्शन आ गया है, मुद्दे नहीं है, अपनी चौकीदारी के बात तो करेंगे नहीं, दूसरों पर उंगली उठाकर कोई अपनी चोरी छुपा नहीं पाए।
गौरतलब है कि ब्रितानी इतालवी कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ भारत सरकार ने 2010 में 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए 77 करोड़ डॉलर का सौदा किया था, जिसमें रिश्वतखोरी का आरोप लगा था। इस सौदे के एक साल बाद इटली की मीडिया में ऐसी रिपोर्टें आई थी कि यूरोप में दो बिचौलियों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने इस सौदे को कराने में अहम भूमिका निभाई है। माना जाता है कि उन्हीं में से एक कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल हैं। क्रिश्चियन मिशेल को 5 दिसंबर को दुबई से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। अब कल अदालत ने मिशेल को 7 दिन के रिमांड पर भेजा है। आदर्श राठौर, बीबीसी दिल्ली।
और अब बात उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में ड्यूटी से लौट रहे पुलिसकर्मियों पर कुछ लोगों ने पथराव किया। नोनहरा थाना क्षेत्र में हुई इस घटना में एक सिपाही की मौत हो गई है। पहले सुनते हैं इस मामले में गाजीपुर के एसपी यशवीर सिंह ने क्या कहा।
पथराव में एक सिपाही है, कांस्टेबल हुआ, मुख्य पथराव उसके साथ हुआ। इससे पहले भी इन्होंने दिन में 4 थाना क्षेत्रों में सड़क जाम करने का प्रयास।
गाजीपुर के एसपी यशवीर सिंह का कहना है कि दिन के वक्त 4 थाना क्षेत्र में कुछ लोगों ने सड़क जाम किया, आक्रामकता अपनाई। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसका ये लोग विरोध कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि हमारे लोगों को छोड़ा जाए, नहीं तो हम सड़क जाम करेंगे। पर धरने पर बैठे लोगों का प्रदर्शन किन मुद्दों को लेकर था और पुलिस पर उनका गुस्सा आखिर क्यों भड़का, इस बारे में पूरी जानकारी के लिए अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की लखनऊ में मौजूद हमारे सहयोगी समीरात्मज मिश्र से।
देखिए, ये निषाद समुदाय के लोग सुबह से ही प्रदर्शन कर रहे थे और इनकी मांगे थी कि आरक्षण की मांग को लेकर के ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये पिछले 4 साल से लगातार आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग कहीं सुनी नहीं गई, न प्रधानमंत्री ने सुनी, न उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सुनी, न ही किसी दूसरे फोरम पे सुनी गई। और ये पूरे प्रदेश भर में और खास तौर पे जहां इनका प्रभाव है पूर्वांचल में, वहां लगातार ये कर रहे हैं। पहले से ही पुलिस को, प्रशासन को ये आभास था कि ये प्रदर्शन करेंगे, शायद उस जगह पे भी करें जहां के प्रधानमंत्री की सभा होनी है, तो मना कर दिया गया था बाकायदा कि किसी तरह का प्रदर्शन नहीं होगा। बावजूद इसके पूरे शहर में अलग अलग जगहों पर ये लोग प्रदर्शन अपना इन्होंने किया। तो जो रैली में आने वाले लोग थे, जो बीजेपी कार्यकर्ता थे, उनके साथ भी सुबह के टाइम पे इनकी झड़पें हुई थी दिन में। और बताया ये जा रहा है कि शाम को प्रधानमंत्री की सभा खत्म हो गई और ये पुलिसकर्मी सारे लोग लौटने लगे, तो अटवा मोड़ एक जगह है जहां पर ये कुछ लोग निषाद समुदाय की ही बड़ी संख्या में धरने पर बैठे थे। तो वैसे भी वहां पे काफी भीड़ थी और इनके धरने पे बैठ जाने की वजह से पूरा जाम लग गया सड़क पर। उस जाम लगने के बाद जब इन लोगों को वहां से हटाने की कोशिश की गई, उसमें ही पुलिस के साथ इनकी दोबारा से झड़प हुई। और बताया यही जा रहा है, जैसा कि पुलिस का कहना है, कि उस समय इन लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और उसी का ये नतीजा है जिसमें पुलिस के कांस्टेबल की मौत हुई, दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं।
غازی پور گھٹنا کے بارے میں جانکاری دے رہے تھے سمیراتمج مشر. میگھالے کے لومتھری کی کوئلہ کھدان میں 16 دنوں سے پھنسے 15 مزدوروں کو نکالنے پہنچی بھارتی نو سینا کی اسپیشل گوتہ خوروں کی ٹیم اپنا ابھیان شروع نہیں کر سکی. نو سینا کے اعلی ادھیکاریوں نے کھدان کے بھیتر پہنچ کر استھتی کا جائزہ تو لیا لیکن کچھ خاص اپکرن نہیں ہونے کے کارن وہ ابھیان شروع نہیں کر پائے. سنیے لومتھری گاؤں سے ہمارے سہیوگی دلیپ شرما کی رپورٹ.
میگھالیہ کے جوائی بدرپور نیشنل ہائی وے سے ہوتے ہوئے آگے کھلریار تک پہنچنے پر سڑک کے کنارے لگے کوئلے کے ڈھیر کو دیکھ کر آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس علاقے میں کوئلے کی سینکڑوں کھدانیں ہوں گی. شنیوار کو بھی سڑک کے دونوں کنارے کھڑے ٹرکوں میں مزدور عام دنوں کی طرح ہی کوئلہ لاد رہے تھے. ایسا بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ غیر ویگیانک طریقے سے چل رہی ان کوئلہ کھدانوں پر نیشنل گرین ٹرائبونل کا پرتیبندھ لگا ہوا ہے. نتیجتاً 13 دسمبر کو کوئلہ نکالنے کھدان کے اندر گئے 15 مزدور اب تک باہر نہیں نکل پائے ہیں. ایسٹ جینتیا ہل ضلع کے سائپونگ چھیتر میں جس کوئلے کی کھدان میں یہ حادثہ ہوا وہاں پہنچنا آسان نہیں ہے. کلریاٹ کے قریب 35 کلومیٹر اندر گاڑی سے پہنچنے کے بعد باقی کا 4 کلومیٹر لمبا راستہ بے حد کٹھن ہے. پہاڑ اور جنگلوں کے بیچ ٹوٹی پھوٹی کچی سڑکیں اور 3 ندیوں کو پار کرنے کے بعد مجھے کوئلے کی وہ کھدان دکھائی دی جہاں نو سینا کے گوتہ خوروں سے لے کر اڑیسہ سے ہائی پاور پمپ لے کر پہنچے فائر بریگیڈ کے جوان لاپتہ مزدوروں کو نکالنے کی تیاریاں کر رہے تھے. لیکن محض 1 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد نو سینا نے اپنا ابھیان روک دیا. کھدان میں پھنسے اپنے چچیرے بھائی کا بے صبری سے انتظار کر رہے فائی ہن لانگ سبا نے کہا. کھدان میں پھنسا میلام دکار میرا چچیرا بھائی تھا. وہ پہلی بار کوئلے کی کھدان میں کام کرنے گیا تھا. کرسمس کے جشن کے لیے وہ تھوڑی زیادہ کمائی کرنا چاہتا تھا. اس نے یہ خطرہ مول لیا. لگتا ہے اب میں اس سے کبھی نہیں مل پاؤں گا. فائی ہن لانگ کے شبد. یہ حادثہ 13 دسمبر کو ہوا تھا اور تب سے این ڈی آر ایف کی ٹیم مزدوروں کی تلاش میں لگاتار ابھیان چلا رہی تھی لیکن اس دوران این ڈی آر ایف کو کوئی سفلتا نہیں ملی. لہذا 15 دنوں کے بعد نو سینا کے گوتہ خوروں اور انیہ ایجنسیوں کی مدد مانگی گئی. این ڈی آر ایف کے سہایک کمانڈنٹ سنتوش کمار سنگھ کہتے ہیں.
ابھی کی استھتی کافی سکاراتمک آئی ہے اور یہاں پر گورنمنٹ کی بھیجی اور بھی ایجنسیز یہاں پہنچ چکی ہیں اور نیوی کے ڈائیورز جو کہ یوز ٹو ہیں زیادہ ڈیپ جانے کے اور انہوں نے بھی نیچے سطح پہ ہماری این ڈی آر ایف کی ٹیم کے ساتھ میں جا کے معائنہ کیا ہے. کچھ پلان کریں گے وہ اور پلان کر کے میں امید کرتا ہوں کہ صبح سے وہ اپنا آپریشن شروع کر پائیں گے.
کئی جٹیل بچاؤ ابھیانوں میں اپنا یوگدان دے چکے جانے مانے انجینئر جسونت سنگھ گل کے انوسار جب تک کھدان میں پھنسے ویکتی کا ٹھیک ٹھیک پتا نہیں چل جاتا ابھیان کو انجام دینا کافی مشکل ہوتا ہے.
واٹر تو پتا چل گیا کتنا ہے. اب پمپ بھی آ گئے ہیں. پمپ ایک بار اسٹارٹ ہو جائیں گے تو 4-5 دن میکسیمم 6 دن کے اندر ڈی واٹر ہو جائے گا. تھائی لینڈ میں صرف ایک ہی پرابلم تھی, وہ تھا ٹریسنگ آف دا پرسن, دیٹس آل. باقی کوئی پرابلم نہیں تھی. یہاں اب یہ ہے کہ پہلے مٹیریل ہی نہیں آ رہا تھا, مٹیریل اب آیا ہے. ان کے پاس ٹرینڈ آدمی نہیں ہے, یہاں روڈ نہیں ہے, یہاں بجلی نہیں ہے. یہاں ابھی آپ تھوڑے دن, 1-2 دن سے یہاں موومنٹ شروع ہوا ہے.
میگھالیہ کا ایسٹ جینتیا ہل ضلع غیر قانونی کوئلہ کھدانوں کے چلتے ہمیشہ سرخیوں میں رہا ہے. بال اپرادھ کے معاملے میں بھی جینتیا ہل ضلع دیش میں سب سے آگے ہیں. یہاں زیادہ تر کوئلہ بےحد سنکری اور چوہے کے چھید سری کی کھدانوں سے نکالا جاتا ہے. ان ریٹ ہال مائننگ میں کتھت طور پر تسکری کے تحت لائے گئے بال مزدوروں کا ذکر بھی ہمیشہ سامنے آتا رہا ہے. دلیپ کمار شرما, بی بی سی, میگھالیہ, لومتھری گاؤں.
اور اب کارکرم میں آگے بڑھیں اس سے پہلے جان لیتے ہیں دلی سے چھپنے والے اخباروں میں آج کیا سرخیاں ہیں. اخباروں کے ساتھ دنیش اپروتی اسٹوڈیو میں ہیں, جانتے ہیں ان سے آج کون سی خبروں کو اخباروں میں جگہ ملی ہے.
جی مانسی, اگستا ویسٹ لینڈ ہیلی کاپٹر خرید معاملے میں کتھت طور پر وچولیے کی بھومیکا نبھانے والے کرسچن مشیل کا بیان لگ بھگ سبھی اخباروں کی سرخی بنا ہے. مشیل کو کل دلی کی پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں پیش کیا گیا تھا. پرورتن ندیشالیہ یعنی ای ڈی کی اور سے یہ بتایا گیا ہے کہ مشیل نے کورٹ کے سامنے اپنے بیان میں شریمتی گاندھی نام کا بھی ذکر کیا ہے. انڈین ایکسپریس نے غازی پور میں پردھان منتری مودی کی ریلی کے بعد نشاد پارٹی کے پردرشن میں ایک پولیس کرمی کی موت کی خبر کو پہلے پنے پر جگہ دی ہے. इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी है जिसके मुताबिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने गुजरात में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी पर निशाना साधा। पटेल ने कहा कि मोदी केवल नेहरू जैकेट पहनने से जवाहरलाल नेहरू नहीं बन सकते।
जी,
इंडियन एक्सप्रेस में ही एक खबर है जिसके मुताबिक सांसद और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि उनकी पार्टी मौजूदा स्वरूप में 3 तलाक विधेयक को राज्यसभा में पास नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन सभी दलों को साथ लिया जाएगा जिनके साथ मिलकर इस विधेयक को गिराया जा सके। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर में आने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए 14 सिफारिशें की हैं। सिफारिशों में कहा गया है कि एक ग्रुप में कम से कम 15 श्रद्धालु होने चाहिए, उनके पास वैध पासपोर्ट होना चाहिए, साथ ही भारत को तीर्थयात्रियों के आने की सूचना कम से कम 3 दिन पहले देनी होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया के ही मुताबिक महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी कर मुंबई में 31 दिसंबर की रात को पब बार होटल खुले रखने को कहा है ताकि लोग नए साल की पार्टी आराम से कर सकें।
जी,
राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार की पहली कैबिनेट बैठक को भी कई अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। गहलोत सरकार ने पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय चुनाव में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को खत्म कर दिया है।
जी, अखबारों की विस्तृत समीक्षा के लिए शुक्रिया दिनेश उप्रेती। और अब आपको बता दें, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे तीसरे टेस्ट का आखिरी दिन यानी 5वें दिन का खेल बारिश के कारण शुरू नहीं हो सका है। फिलहाल लंच टाइम है। ऑस्ट्रेलिया के पास अभी 2 विकेट बचे हुए हैं और उसे जीत के लिए 141 रनों की आवश्यकता है। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट में 258 रन बना लिए हैं और पैट कमिंस 61 रन बनाकर और नाथन लायन 6 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत ने अपनी पहली पारी में 443 रन और दूसरी पारी में 106 रन बनाए थे। अब तक इस सीरीज में दोनों टीमें एक एक टेस्ट जीतकर बराबरी पर हैं। और क्या कुछ हुआ खेलों की दुनिया में, सुनते हैं खेल समाचारों में।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। दक्षिण अफ्रीका ने सेंचुरियन में खेले गए पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को कल 6 विकेट से हरा दिया। दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए दूसरी पारी में 149 रनों का लक्ष्य था जो उसने सलामी बल्लेबाज डीन एल्गर के 50 और हाशिम आमला के नाबाद 63 रन की मदद से केवल 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी, यासिर शाह और शान मसूद ने 1-1 विकेट अपने नाम किया। इससे पहले पाकिस्तान की दूसरी पारी केवल 190 रनों पर समाप्त हुई। पाकिस्तान के इमामुल हक ने 57 और शान मसूद ने 65 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका के डुआने ओलिवियर ने 59 रन देकर 5 और कैगिसो रबाडा ने 47 रन देकर 3 विकेट झटके। डेल स्टेन ने भी 34 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। पहली पारी के आधार पर दक्षिण अफ्रीका को 33 रनों की बढ़त मिली थी। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। उधर गेंद से छेड़छाड़ के दोषी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर कैमरन बेनक्राफ्ट का 9 महीने का प्रतिबंध कल समाप्त हो गया। इसके बाद उन्हें पर्थ स्कॉर्चर्स की टीम में शामिल कर लिया गया जो बिग बैश लीग में अगले मुकाबले में होबार्ट हरिकेन्स के खिलाफ खेलेगी। दक्षिण अफ्रीका में इस साल मार्च में गेंद से छेड़खानी विवाद के बाद 26 साल के सलामी बल्लेबाज बेनक्राफ्ट पर 9 महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया था। तब ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ और उपकप्तान डेविड वार्नर पर 1 साल का प्रतिबंध लगा था। वहीं स्पेनिश क्लब बार्सिलोना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी का मानना है कि वो ब्राजील के स्टार फुटबॉलर नेमार को क्लब में वापस शामिल होते हुए देखना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बार्सिलोना में जाने की अटकलों को भी समाप्त कर दिया।
और अब कार्यक्रम में आपसे विदा लें, उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर दिनेश उप्रेती से।
बीबीसी समाचार। सीरिया से अमरीकी सेना की वापसी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के बाद अब रूस और तुर्की सीरिया में मिलकर काम करेंगे। बांग्लादेश में आज होने जा रहे आम चुनाव के लिए कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन के साथ व्यापार विवाद पर बातचीत में कुछ प्रगति हुई है। कोस्टारिका ने कहा है कि अमरीकी राज्यों के संगठन यानी OAS ने आग्रह किया है कि निकारागुआ के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाए। इटली की संसद ने अगले साल के लिए संशोधित बजट को मंजूरी दे दी है।
انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے پورو کپتان ایلسٹر کک اور پورو رگبی کپتان بل بیماؤنٹ کو نئے سال میں نائٹ ہوڈ سے نوازا جائے گا۔ بی بی سی سماچار۔
نمسکار بھارت میں آج اتنا ہی۔ کارکرم کا تکنیکی پکش سنبھالا راجیش چوہان نے۔ اگلا پرسارن دن بھر شام 7:30 بجے۔ تب تک دیش دنیا کی خبروں کے لیے بنے رہیے bbchindi.com کے ساتھ۔ فی الحال مانسی داش سمیت پوری ٹیم کو دیجیے انمتی۔ نمسکار۔